नमस्कार, मैं अनु कुमारी सिंह, एमए फाइनल की छात्रा, चतुर्थ सत्र हेतु विजयपाल सिंह द्वारा रचित पुस्तक केशव दास का रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। विजयपाल सिंह, जो कि भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रह चुके हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, अब आपके सामने प्रस्तुत है इस पुस्तक की विषय सूची, संपादकीय। पहला चैप्टर, केशव का व्यक्तित्व और रचनाएं, इसे लिखा है डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने। दूसरा चैप्टर, केशव दास, इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा चैप्टर, केशव के दार्शनिक सिद्धांत, इसके लेखक हैं प्रोफेसर सरनाम सिंह शर्मा अरुण। चौथा, केशव का आचार्यत्व, प्रोफेसर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। रसिक प्रिया, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कवि प्रिया, डॉक्टर ओम प्रकाश। केशव का अलंकार वर्णन, प्रोफेसर भागीरथ मिश्र। केशव की कला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। केशव के संवाद, कृष्ण शंकर शुक्ल। केशव की अलंकार योजना, डॉक्टर किरण चंद्र शर्मा। केशव की छंद योजना, डॉक्टर गार्गी गुप्त। केशव की भाषा, डॉक्टर महेंद्र कुमार। केशव का प्रकृति चित्रण, डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशव की भाव व्यंजना, डॉक्टर हीरा लाल दीक्षित। रामचंद्रिका में महाकाव्यत्व, डॉक्टर जगन्नाथ तिवारी। टीकाएं और टीकाकार, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। केशव के काव्य में युगीन चित्रण, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। केशव का हिंदी साहित्य में स्थान, डॉक्टर विजयपाल सिंह। रामचंद्र चंद्रिका, केशव की रचना रामचंद्र चंद्रिका, जिसमें गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, राम वंदना, अयोध्या पुरी वर्णन, सीता स्वयंवर, सूर्योदय वर्णन, विश्वामित्र और जनक की भेंट, धनुष भंग, परशुराम संवाद, राम वन गमन, पंचवटी वर्णन, वन विलास वर्णन, सीता हरण, सीता विलाप, वर्षा वर्णन, शरद वर्णन, हनुमान लंका गमन, रावण प्रसाद, सीता दर्शन, रावण सीता संवाद, मुद्रिका प्रदान, सीता हनुमान संवाद, मुद्रिका वर्णन, हनुमान रावण संवाद, लंका दाह, हनुमान राम के समक्ष, सीता संदेश, तिथि प्रयाण, मंदोदरी का हितोपदेश, विभीषण का शरणागमन, रावण अंगद संवाद, राम रावण युद्ध, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा, राम राज्य वर्णन। इन शीर्षकों से रामचंद्र चंद्रिका। अब है रसिक प्रिया के अंतर्गत आए कुछ शीर्षक, श्री कृष्ण वंदना, उसके बाद नवरस वर्णन, नायक जाति वर्णन, अथ षोडश श्रृंगार वर्णन, श्री राधिकाजू को बोधा खाव, श्री राधिकाजू को प्रच्छन्न पूर्वानुराग, श्री कृष्ण जी को प्रच्छन्न पूर्वानुराग, श्री कृष्ण जी को प्रकाश लघुमान, श्री कृष्ण को प्रसंग विध्वंस, श्री कृष्ण जी को परिहास, श्री राधिकाजू को अद्भुत रस। केशव की अगली पुस्तक कवि प्रिया के संबंध में भी कुछ शीर्षकों को पढ़ना है, अथ कविता अलंकार वर्णन, इंद्र जीतजू को दान बाघ वर्णन, अथ भाद्रपद वर्णन, ग्रीष्म ऋतु वर्णन, शरद ऋतु वर्णन, श्लेषालंकार वर्णन, पुनः विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव रचित चरित छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका, सिख नक, टिप्पणी भी दिए गए हैं इस पुस्तक के अंत में, रामचंद्र चंद्रिका पर, रसिक प्रिया पर, कवि प्रिया पर, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित और रतन बावनी पर। अब आपके सामने प्रस्तुत है आचार्य केशवदास के संबंध में लिखे गए विभिन्न आलोचकों की आलोचनाएं। केशव का व्यक्तित्व और रचनाएं, इसे लिखा है डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने। केशवदास ने अपनी जन्मतिथि के संबंध में अपनी रचनाओं में कहीं उल्लेख नहीं किया। आलोचकों का एक वर्ग केशवदास का जन्म संवत 1612 विक्रम मानता है। दूसरा वर्ग, जिसमें लाला भगवान दीन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, प्रोफेसर गौरी शंकर द्विवेदी केशवदास का जन्म 1618 विक्रम मानते हैं। इनके अतिरिक्त श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी संवत 1508 तथा शिव सिंह सेंगर संवत 1624 को भी केशवदास का जन्म संवत मानते हैं। सभी आलोचकों की मान्यता के पीछे मान लेने का आग्रह तो अवश्य है, किंतु प्रामाणिक आधारभूत सामग्री का उल्लेख किसी ने नहीं किया। इसी प्रकार केशव के मृत्यु संवत के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु श्री राम नरेश त्रिपाठी श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी केशव का मृत्यु संवत 1674 विक्रम मानते हैं। इनके अतिरिक्त पंडित अंबिका दत्त व्यास संवत 1670 विक्रम तथा श्री गौरी शंकर द्विवेदी संवत 1680 विक्रम को केशव का मृत्यु संवत ठहराते हैं। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित के अपने शोध प्रबंध आचार्य केशवदास में उक्त दोनों वर्गों की मान्यताओं का विशद विवेचन करके केशवदास का जन्म संवत 1612 तथा मृत्यु संवत 1674 की ही समीचीन ठहराया गया है। अंतःसाक्ष्य। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया में केशव ने अपने वंश, पूर्वज तथा जीवन परिचय संबंधी कुछ उल्लेखनीय बातों का संकेत दिया है। पुत्र भय हरिनाथ के कृष्ण दत्त शुभ वेश, सभा साह संग्राम की जीती गढ़ी अशेष, तिनको वृत्ति पुराण की दीन्ही राजा रुद्र, तीन के काशी नाथ सुत सोभे बुद्धि समुद्र, जिनको मधुकर साह नृप बहुत करियो सम्मान, तिनके सुत बलभद्र शुभ प्रगटे बुद्धि निधान, बालही ते मधुसाह नृप जिन पै सुने पुराण, तिनके सोदर भय केशवदास कल्याण, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कभी भो मंदमति ते ही कुल केशवदास, गुरु करी मान्यो इंद्रजीत तन मन कृपा बिचारी, ग्राम दिए एक बीस तब ताके पाए पखारी, इंद्रजीत के हेत पुनि राजा राम सुजान, मान्यो मंत्री मित्र कह केशवदास प्रमाण। ये पंक्तियां थी कवि प्रिया छंद 13-21 तक। कवि प्रिया के द्वितीय प्रभाव के विवरण से स्पष्ट होता है कि केशवदास जी का जन्म मिश्र उपाधिधारी सनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पितामह कृष्ण दत्त मिश्र को राजा रुद्र प्रताप के आश्रय में पुराण वृत्ति प्राप्त थी। कवि के पिता का नाम काशीनाथ था, जिनको राजा मधुकर शाह ने विशेष सम्मान प्रदान किया था। केशवदास जी तीन भाई थे, बड़े बलभद्र मिश्र और छोटे कल्याण मिश्र। केशवदास को परिस्थितिवश भाषा में कविता करनी पड़ी थी, यद्यपि उनके कुल के दास भी संस्कृत में बोलते थे। महाराज इंद्रजीत सिंह केशव को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने कवि को 21 गांव दान में दिए थे। इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई राम शाह भी केशव को मंत्री और मित्र मानते थे। अपने महाकाव्य रामचंद्रिका के प्रारंभ में भी कवि ने अपना संक्षिप्त वंश परिचय दिया है। सनाढ्य जाति गुणाढ्य है, जग सिद्ध शुद्ध स्वभाव, सुकृष्ण दत्त प्रसिद्ध है, मही मिश्र पंडित राव, गणेश सो सुत पाइयो बुद्ध काशी नाथ अगाध, अशेष शास्त्र विचारी के जिन जिन्यो मत साध, उपज्यो ते ही कुल मंदमति सठ कवि केशव दास, रामचंद्र की चंद्र का भाषा करी प्रकाश। ये पंक्तियां थी रामचंद्र का पूर्वार्ध छंद संख्या 4 की। उक्त परिचय कविप्रिया में दिए हुए परिचय का ही शब्द रूपांतर है। रामचंद्रिका को भाषा में लिखने की ही अधिक व्यंजना है। रसिक प्रिया में दिया गया परिचय कुछ अधिक सूक्ष्म है। नदी वैतवे तीर जहाँ तीरथ तुंगारण्य नगर ओरछा बहु बसे धरती तल में धन्य। दिन प्रति जहाँ दुनौ लहे जहाँ दया अरुदान एक तहाँ केशव सुकवि जानत सकल जहान। ये पंक्तियाँ हैं रसिक प्रिया प्रथम प्रभाव छंद संख्या 3 और 5 की। इस तुलेख से व्यंजित होता है कि केशवदास बुंदेलखंड के ओरछा राज्यांतर तुरंगारण्य के निकट बेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा नगर में निवास करते थे। बेतवा सरिता को इन्होंने गंगा के समान पवित्र माना है। संभव है कि इसी मोह के कारण ये तीर्थ भूमि बेतवा प्रदेश को छोड़कर कहीं ना जा सके। देखिए, ओरछे तीर तरंगनी बेतवे ताही तरह रिपु केशव को है अर्जुन बाहु प्रवाह प्रबोधित रेवा ज्यो राजन की रज मोह ज्योति जगह जमुना सी लगे जग लोचन लोलित पाए बियो है सुर सुता शुभ संगम तुंग तरंगित गंग सी सो है। वे श्रेष्ठ कवि थे जिनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। वास्तव में कवि केशव का जन्मस्थान ओरछा ही रहा होगा क्योंकि इनके काव्य में ओरछा प्रदेश के प्रति विशेष आकर्षण दिखाई देता है। ऐसे छंद लिखने वाला कवि कैसे हृदयहीन रहा होगा। केशवदास ने अपने वैराग्य ग्रंथ विज्ञान गीता में भी रामचंद्रिका के समान ही ग्रंथ परिचय दिया है परंतु कुछ विशेषता के साथ। देखिए, केशव तुंगा रण्य में नदी बेतवे तीर जहांगीरपुर बहु बसे पंडित मंडित भीर तहां प्रकाश सो निवास मिश्र कृष्ण दत्त को अशेष पंडिता गुणी सुदास विप्र भक्त को सुकासी नाथ तस्य पुत्र विग काशी नाथ को सुनाढ्य कुंभवार अंश वंश वेद व्यास को। ये पंक्तियां थी विज्ञान गीता छंद संख्या 3 और 5 की। अब और देखिए, वृत्ति दई पुरुखानी की तेहु बालकनी आसु मोहि आपनौ जानी कै गंगा तट देव वासु वृत्ति दई पदवी दई दूरी करो दुख त्रास जाई करो सकलत्र श्री गंगा तट बस बास। ये पंक्तियां हैं विज्ञान गीता छंद संख्या 57। विज्ञान गीता के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि राजा वीर सिंह देव ने केशव से मनोरथ पूर्ण करने के लिए कहा, जिस पर केशव ने कहा, आपके पूर्व पुरुषों ने जो हमारे पूर्वजों को वृत्ति दी थी उसे शीघ्र ही मेरे बालकों को प्रदान कीजिए। इससे प्रतीत होता है कि विज्ञान गीता के रचनाकाल संवत 1667 तक केशव सपत्निक थे, उनके एकाधिक संतान थी। राजा वीर सिंह ने केशव की पैतृक वृत्ति को रोक लिया था जिसको उन्होंने केशव के द्वारा पुनः कामना करने पर प्रदान किया। यह भी प्रतीत होता है कि केशव का अंतिम जीवन गंगा तट पर व्यतीत हुआ होगा। वीर सिंह देवरचित इस ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ से भी केशव के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। जब राजा रामसाह और वीर सिंह देव आदि भाइयों में परस्पर युद्ध छिड़ा था तब केशवदास वीर सिंह के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे जिनमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली थी। इससे अब प्रकट होता है कि वीर सिंह देव और राजा राम साह दोनों ही केशव में विश्वास रखते थे। देखिए, मंगद पायक प्रेम बनाए पठे केशव मिश्र बनाए जो कछु करी आवहु सुप्रमान यो कही पठे राम सुजान। वीर सिंह, काशी सन के तुम कुल देव जानत हो सब ही के भेद जानत भूत भविष्य विचार वर्तमान को समुझत सार। जिही मग होए दुहन को भलो तेही मग हो ही चलावो चलो। केशव, यह सुनी केशव दास बिचारी बाद कही सुनिए सुखकारी नृपति मुकुट मणि मधुकर साही तिनके सुत द्वय दिन दुखदारी दुहु भांति सुख के फर पड़े फरे परमेश्वर तुम राजा करे। वीर सिंह देव रचित। वही साक्ष्य, वही साक्ष्य में शिव सिंह सरोज मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख केशव के जन्म संवत के संबंध में हो चुका है। इनके अतिरिक्त मूल गोसाई चरित कामरूप की कथा तथा वैराग्य शतक ये तीन रचनाएं और मिलती हैं जिनमें केशव का उल्लेख मिलता है। इनमें मूल गोसाई चरित विशेष रूप से उल्लेख्य है। यद्यपि यह ग्रंथ अप्रामाणिक है, बाबा बेणी माधव दास ने अपनी रचना में लिखा है कि संवत 1642 के लगभग केशव दास तुलसी से मिलने काशी गए थे। तुलसी ने उनके लिए प्राकृत कवि केशव को आने दो कहकर बुला भेजा। मूल गोसाई चरित में इसका जिक्र भी किया गया है। कवि केशव बड़े रसिया, घन श्याम शुकुल नभ के बसिया, कवि जानी के दर्शन हेतु गए, रही बाहिर सूचन भेजी दिए, सुनी के जू गुसाई कहे इतनो, कवि प्राकृत केशव आवन दो, फिरिगे झट केशव सो सुनी के, निज तुच्छता आपुति गुनी के, जब सेवक टेर उगे कही के, हौ भेटी हो काल ही विनय गही के, रची राम सुचंद्र का राति ही में, जुरे केशव जु असी घाट ही में, सत्संग जमी रस रंग मची, दो प्राकृत दिव विभूति सची। केशव ने इसमें अपना अपमान समझा और लौटकर रामचंद्रिका की रचना की और पुनः तुलसी से मिले। प्रेत योनि मूल गोसाई चरित में इस संदर्भ में लिखा गया है, उड़छे केशव दास प्रेत हता घेरेउ मुनि ही, उघरे विनही प्रयास चढ़ी स्वर्ग ही गयो। प्रेत योनि से उद्धार की बात भी गोसाई चरित में है। गोसाई चरित वास्तव में केशव के संबंध में किंवदंती गढ़ने में सहायक सिद्ध हुई है। कामरूप कथा प्रेम काव्य परंपरा की रचना है, फिर भी इसमें सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं है। यह रचना केशव के वंशज हरिसेवक मिश्र की है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। यह भी अप्रकाशित है। इसमें लेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है, कृष्ण दत्त सुत गुण जलद काशी नाथ परवान, तिनके सुत प्रसिद्ध हैं केशव दास कल्याण, कवि कल्याण के तनय हुए परमेश्वर इही नाम, तिनके पुत्र प्रसिद्ध हुए प्राग दास इही नाम, तीन सुत हर सेवक कियो यह प्रबंध सुखदान। इसमें परिचय संबंधी कोई विशेषता उल्लेखित नहीं है। इसी प्रकार देव कवि ने अपने वैराग्य शतक में गंग बिरबल और केशव दास का उल्लेख किया है। केशव संगंग से प्रसिद्ध कविवर सेजे, काल ही गए न वृथा काल ही बितावहीं, कविवर परम प्रवीण वीरवर कैसो, गंग की सुकविताई गाई सतपाथी ने, एक दल सहित बिलाने एक पल ही में, एक भय भूत एक मींजी मारे हाथी ने। केशव का स्वभाव उपर्युक्त विवेचन से केशव दास का जन्म संवत मृत्यु संवत जाति कुटुंब तथा निवास स्थान का संक्षिप्त विवरण हुआ। अब हमें केशव के ग्रंथों के माध्यम से उनके स्वभाव तथा स्वाभिमान के संबंध में देखना है। केशव दास स्वभाव से स्वाभिमानी कवि थे। भक्त कवियों के समान उनमें वाणी दैन्य नहीं था। उन्हें अपने पांडित्य का अभिमान था, तभी तो वे अपने को केशव दास सिरमौर तथा विदित जहान आदि कहते हैं। उन्होंने अपने वंश और जाति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। केशव दास धन के लिए विशेष आकर्षित नहीं रहते थे, उसकी तुलना में आदर सम्मान को विशेष महत्व देते थे। देखिए कवि प्रिया की पंक्तियों में, इंद्रजीत तासों कहयो मांगन मध्य प्रयाग, मांग्यो सब दिन एक रस कीजे कृपा सभाग, यो ही कहयो जू बीर बर मांगी जू मन में होए, मांग्यो तब दरबार में मोही न रोके कोए। स्वभाव से वे स्पष्टवादी और निडर थे। यह बात उनके ऐतिहासिक काव्य वीर सिंह देव चरित से भली प्रकार प्रकट होती है। उसमें उन्होंने राजा वीर सिंह देव के द्वारा आक्रमण के जाने पर राजा राम शाह को उनकी कमियों से अवगत कराया है और वीर सिंह देव के निकट स्थायी संधि के लिए मध्यस्थ का भी कार्य किया। वीर सिंह देव को भी उन्होंने राजा राम शाह के चरणों की सेवा करने की सलाह दी है। अस्पष्टता का उदाहरण रामचंद्रिका से मिलता है। केशव राम भक्त कवि होते हुए भी राम के द्वारा सीता त्याग को अनुचित ही बताते रहे हैं। उदाहरण देखिए रामचंद्रिका के उत्तरार्ध भाग का। पातक कौन तजी तुम सीता, पावन होत सुने जग गीता। दोष विद्री नहीं दोष लगावे, सो प्रभु यह फल काहे न पावे। इसी प्रकार विभीषण के चरित्र को भी उन्होंने अति श्रेष्ठ और शुभ्र नहीं माना है। वे कहते हैं, आउ विभीषण तू रण दूषण, एक तु ही कुल को निज भूषण। जूझ जुरे जो भगे भय जी के, शत्रु ही आनी मिले तुम नीके। देव वधु जब ही हरि ल्यायो, क्यों तब ही तजी ताही न आयो। यो अपने जिए के डर आयो, छुद्र सबै कुल छिद्र बतायो। विभीषण ने ज्येष्ठ भाई रावण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी मंदोदरी को पत्नी रूप में देखा रखा। केशव की दृष्टि से यह चारित्रिक दोष अपराध है। राम भक्त होने के कारण तुलसी ने विभीषण के इस दोष को उद्घाटित नहीं किया, किंतु अस्पष्टवादी कवि केशव से यह कथा दोष नहीं हुआ और स्पष्टता उसका उल्लेख किया है। केशव स्वभाव से रसिक थे, जैसा कि उनके इस प्रसिद्ध दोहे से व्यंजित होता है। केशव केसन असी करी, तस अरिहु न कराए, चंद्र वदनी मृग लोचनी, बाबा कही कही जाए। मृगलोचनी चंद्रवदनी से बाबा संबोधन उनके युवा मन को सहाय न हो सका। कई आश्रयदाताओं के बीच में रहने पर भी उनकी विनोद प्रियता दबकर समाप्त नहीं हुई। आश्रयदाता हिंदी साहित्य के तीन कवि ऐसे हैं जिन्हें अपने आश्रयदाताओं से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। वे हैं रासोकार चंद्र, शिवराज भूषण के रचयिता भूषण और आचार्य कवि केशवदास। भूषण को अपने आश्रयदाता का मंत्री, मित्र और युद्ध सहयोगी बनने का सौभाग्य नहीं मिला। जो नैकट्य पृथ्वीराज और चंद में था, वही इंद्रजीत सिंह और केशव में था। केशव के कविप्रिया में दिए गए कवि वंश वर्णन से प्रकट होता है कि राजा महाराजाओं से प्राप्त सम्मान उनका पैतृक अधिकार था। उनके पितामह कृष्णदत्त, पिता काशीनाथ, अग्रज बलभद्र, मिस ओरछा नरेशों से सम्मानित होते रहे हैं। कविप्रिया में एक छंद ऐसा मिलता है जिसमें महाराज चंद्रसेन का नाम आया है, जिसे प्रतीत होता है कि इनके प्रथम आश्रयदाता महाराज चंद्रसेन ही थे। वे जोधपुर के महाराज मालदेव के पुत्र थे, जो सम्राट अकबर के अधीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आजीवन मुगलों का सामना किया। केशव ने इनकी तलवार की प्रशंसा में लिखा है, रजय रज केशव दास टूटत अरुण लार, प्रतिभट अंकन ते अंक पै सरतु है। सेना सुंदरीन के विलो की मुखभूषणनी, किलकी किलकी जाहि ताहि को धरतु है। गाढ़े गढ़ खेल ही खिलौननी ज्यो तोरी डारे, जग जय यस चारु चंद्र को अरतु है। चंद्र सेन से भुवपाल आंगन विशाल रण, तेरो करवाल पाल लीला सी करतु है। महाराज चंद्रसेन अपने पिता की मृत्यु से अपनी मृत्यु तक सिवाना के किले पर अधिकार किए थे। इसी बीच संभव है केशवदास जी सिवाना गए हों, जहां महाराज चंद्रसेन से इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ हो। केशव के दूसरे आश्रयदाता हैं महाराज इंद्रजीत सिंह। आप ओरछाधीश थे। आपके बड़े भाई का नाम महाराजा रामसाह था। महाराज रामसाह ने केशव को कछुआ की जागीर दी थी। कवि प्रिया पहला प्रभाव छंद संख्या 35 से 40 में देखिए। सूत सोदर नृप राम के, यद्यपि बहु परिवार, तदपि सबे इंद्रजीत सिर राज काज को भार। कल्प वृक्ष सो दानी दिन, सोकर सागर सो गंभीर, केशव सुरो सूर सो अर्जुन सो रंधीर। ताही कछोवा कमल सो गढ़ दिन हो नृपराम, विधि साधत बैठी तहां केशव बाम अबाम। केशव की रसिक प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह के दरबार में ही हुई थी। आप कविता प्रेमी, संगीत प्रेमी, गुणग्राही राजा थे। केशव का अधिकांश समय आपके साथ ही व्यतीत हुआ है। केशव ने बड़े सम्मान से राजा इंद्रजीत का नाम लिया है। गुरु करी माने और इंद्रजीत, तनमन कृपा विचारी, ग्राम दय 21 तब ताके पाए पखारी। इंद्रजीत के हेतु पुनि राजा राम सुजान, मान्यो मंत्री मित्र कह केशव दास प्रमाण। केशव के तीसरे आश्रयदाता महाराज इंद्रजीत सिंह के भाई राजा वीर सिंह देव हैं। केशव ने अपने काव्य ग्रंथ वीर सिंह देव चरित में इनका यशगान बड़े विस्तार से किया है। विज्ञान गीता की रचना भी कवि ने इन्हीं की प्रेरणा से की थी। आपके दान और वीरता की प्रशंसा कवि ने भूरिसह की है। राजा मधुकर साह सुत राजा वीर सिंह, देव राजनी की मंडली में राजत जनक से, केसो राई राजा वीर सिंह ही के नाम ही थे। अरि राज राजनी के मद मुरझात हैं, सजल जलद ऐसे दुरित विलोकियत, पर दल दिल बल दल केसो पाते हैं। ये पंक्तियां थी विज्ञान गीता छंद संख्या 22 और 26। केशव की कविप्रिया के एक छंद 31 में किसी राजा अमर सिंह का भी उल्लेख है। यह नहीं कहा जा सकता कि अमर सिंह रीवा के राजा अमर सिंह थे अथवा महाराणा प्रताप सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह थे। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने महाराणा के पुत्र के संबंध में अपना मत दिया है। केशव दास ने अमर सिंह की प्रशंसा में लिखा है, परम विरोधी अविरोधी है रहत सब, दानिन के दानी कवि केशव प्रमाण है, अधिक अनंत आप सोहत अनंत संग, असरण सरण निरक्षक निधान है, हुतभुक हित मति श्रीपति बसत ही है, भावत है गंगा जल जग को निछान है, केशो राय की सौक है केशो दास देखी देखी, रुद्र की समुद्र की अमर सिंह रान है, रुद्र की समुद्र की अमर सिंह राम है। ये पंक्तियां हैं कवि प्रिया की। स्नेही मित्र, केशव ने एक वीर सिंह देव रचित में अपने स्नेही मित्र के रूप में महाराज अकबर के सभासद एवं नवरत्नों में से एक महेश दास दुबे उपनाम बिरबल का उल्लेख किया है। मोरे हित विशेषण शब्द से उनका नैकट्य बताया है। आपको दान प्रशंसा में कवि प्रिया के कई छंद मिलते हैं। केशव समय समय पर बिरबल से मिलने जाया करते थे, इसलिए उन्होंने बिरबल से कहा, मांग्यो तब दरबार में मोही न रोके कोई। केशव के निम्न छंद से प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत सा धन पुरस्कार रूप में लिया होगा। कवि प्रिया सातवां प्रभाव की पंक्ति देखिए, केशव दास के भाल लिख्यो विधि रंक को अंक बनाए संवार, धोए धुए नहीं छूटो छूटे बहु तीरथ के जल जाए पखारो, हुए गयो रंक ते राव तबे जब वीर बलि नृपनाथ निहार्यो, भूली गयो जग की रचना चतुरानन बाय रहयो मुखचार्यो। राजा टोडरमल से भी कवि का परिचय था। आप शेरशाह सूरी और अकबर के विशेष अधिकारी रहे हैं, परंतु केशव ने टोडर के उदासीन स्वभाव के कारण विशेष सम्मान नहीं दिया है। टोडर तुव मित मरे सब ही सुख सोयो, मोरे हित बरबीर मरे दुख दीननी रोयो। केशव के शिष्य वर्ग में महाराजा इंद्रजीत सिंह की सभा गायिका प्रवीण राय का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। कहते हैं कि केशव ने कविप्रिया की रचना प्रवीण राय को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। कविप्रिया में उन्होंने कहा भी है, सविता जीव कविता दई ताकह परम प्रकाश, ताके काज कविप्रिया के नहीं केशव दास। प्रवीण राय की प्रशंसा करते हुए केशव ने उसकी तुलना उपमा उमा रमा शारदा तथा शिवा से की है। कविप्रिया में वे कहते हैं, रत्नाकर लालित सदा परमानंद ही लीन, अमल कमल कमनीय कर रमा की राय प्रवीण, राय प्रवीण की शारदा सुचि रुचि रंजित अंग, वीणा पुस्तक धारिणी राजहंस सुत्संग, वृषभ वाहिनी अंग उर वासुकी लसत प्रवीण, शिव संग सोहे सर्वदा सिवा की राय प्रवीण, नाचही गावती पढ़ती सब सबै पजावत बीन, तिनमें करत कवित इक राय प्रवीण प्रवीण। वास्तव में प्रवीण राय नामत की वैश्या थी। वह महाराज इंद्रजीत सिंह में ही परम आसक्त थी, इसलिए उसने अकबर के निमंत्रण की भी उपेक्षा कर दी थी और इसी संबंध से केशव ने उसकी तीव्र प्रशंसा की है। साथ ही वह काव्य कला कुशल भी थी। कवि की प्रशंसा के लिए एकमात्र यही गुण बहुत है। महाराज इंद्रजीत सिंह भी केशव को गुरुवत मानते रहे हैं। उन्होंने गुरु दक्षिणा में उन्हें 21 गांव भी दिए थे। अप्रत्यक्षता रीतिकाल के सभी परवर्ती कवि केशव के शिष्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि कवि प्रिया ग्रंथ सभी के लिए कवि शिक्षा का ग्रंथ है। केशव से बिहारी का पिता पुत्र संबंध, केशव से बिहारी का पिता पुत्र संबंध सभी विद्वान नहीं मानते। पंडित गौरी शंकर द्विवेदी तथा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर इस मान्यता के प्रबल पक्षपाती हैं तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि उक्त मान्यता के विपक्ष में अपना मत देते हैं। इस मान्यता का सूत्रपात सर्वप्रथम सन 1895 में स्वर्गीय राधाकृष्ण दास जी ने किया था। इस मान्यता के मूल में चार बातें थी। पहला, दोनों समकालीन थे। दूसरा, बिहारी का वह दोहा, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल, जिसमें बिहारी का जन्म ग्वालियर में, लड़कपन बुंदेलखंड में और युवावस्था ससुराल में बीती। बिहारी के दोहे में बुंदेली के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। चौथा, बिहारी ने एक दोहे में केशव राय शब्द का प्रयोग करके आदर पूर्वक केशव का नाम लिया है। विद्वानों ने उक्त पक्षों के समर्थन में बिहारी काव्य से उदाहरण भी दिए हैं। इस संबंध में विशद वर्णन के लिए बिहारी रत्नाकर, बुंदेलखंड वैभव प्रथम भाग, आचार्य केशव दास, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ग्रंथ विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। बुंदेलखंड वैभव प्रथम भाग में केशव पुत्रवधु नाम से केशव की पुत्रवधु का उल्लेख किया गया है। केशव के विज्ञान गीता के साक्षी वृत्ति दई पुरखानी की देव बालकनी आसु से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि केशव कलत्र पुत्रादि से युक्त पारिवारिक व्यक्ति थे और उनकी पुत्र वधु की प्रसिद्धि स्वसुर किंतु प्रसिद्ध कवि केशव दास के साथ हुई। केशव की रचनाएं। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने अपने शोध ग्रंथ आचार्य केशव दास में विविध प्रमाणों के आधार पर केशव के 8 ग्रंथ प्रमाणित माने हैं। काल क्रमानुसार वे हैं। पहला, रसिक प्रिया संवत 1627 विक्रम। दूसरा, रामचंद्रिका संवत 1657 विक्रम। तीसरा, कवि प्रिया संवत 1658 विक्रम। चौथा, रतन बावनी संवत 1658 से संवत 1664 तक। पांचवा, वीर सिंह देवचरित संवत 1664 विक्रम। छठा, विज्ञान गीता संवत 1667 विक्रम। सातवां, जहांगीर जसचंद्रिका संवत 1669 विक्रम। आठवां, नक्सिक लगभग संवत 1658 विक्रम। प्रामाणिक ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत है। पहला, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के रचना संवत के संबंध में स्वयं कवि का साक्ष्य प्रस्तुत है। संवत 1600 बरस बीते 48 कार्तिक सुदी तिथि सप्तमी बार बरन रजनीश। उक्त साक्ष्य के अनुसार ग्रंथ की समाप्ति कार्तिक सुदी सप्तमी चंदवार संवत 1647 को हुई थी। कवि ने इस ग्रंथ की रचना अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के प्रत्यर्थ की थी। इसी शब्द भावना के कारण प्रारंभ में कवि उक्त रचना को स्वरचित बताता है, किंतु प्रत्येक प्रभाव के अंत में इंद्रजीत सिंह विरचित बताया है। साथ ही रसिकों की रसिक वृत्ति के तोष के लिए भी कवि ने रचना प्रणयन का कारण दिया है। देखिए, तिन कवि केशव सो किन्हो धर्म सने हो, सब सुख दय करी यो कहो रसिक प्रिया कर देहु। ये पंक्तियां थी रसिक प्रिया प्रथम प्रभाव छंद संख्या 10। इति श्री मन महाराज कुमार इंद्रजीत विरचितायाम रसिक प्रियायाम प्रच्छन्न प्रकाश संयोग वियोग वर्णनम नाम प्रथम प्रभाव। रसिक प्रिया छंद संख्या 12 की कुछ पंक्तियां देखिए। अति रति गति भति एक करी विविध विवेक विलास रसिकन को रसिक प्रिया कीनी केशव दास। वर्ण विषय की दृष्टि से देखा जाए तो रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें प्रधानतः श्रृंगार रस का वर्णन है, साथ ही काव्य दोष और वृत्तियों का भी वर्णन है, किंतु ग्रंथ के अधिकांश भाग में श्रृंगार रस के विविध पक्षों का वर्णन है। ग्रंथ 16 प्रभावों में व्यवस्थित है। यह ग्रंथ केशव के आचार्यत्व को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण है। इसमें स्थान स्थान पर काव्य सौंदर्य के भी दर्शन होते हैं। कवि का यह प्रथम लक्षण ग्रंथ होते हुए भी भाव चित्रण में सफल तथा शास्त्र सिद्धांत प्रतिपादन में महत्वपूर्ण है। दूसरी रचना देखिए, रामचंद्रिका। केशव के सभी ग्रंथों में रामचंद्रिका आकार में सबसे बड़ी रचना है और प्रसिद्धि की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित। इस काव्य के सृजन की मूल प्रेरणा केशव को आदि कवि वाल्मीकि से मिली है। वाल्मीकि मुनि स्वप्न में दिनहो दर्शन चारु केशव 300 यों कहयो क्यों पाऊ सुख सारू। मुनिपति यह उपदेश दय जब ही भय अदृष्ट केशव दास तहि करयो रामचंद्र जू इष्ट। ग्रंथ की समाप्ति के संबंध में उल्लेख मिलता है 1658 कार्तिक सुदी बुधवार रामचंद्र की चंद्रिका तब लीहो अवतार, अर्थात कार्तिक सुदी बुधवार संवत 1658 को रामचंद्रिका महाकाव्य की रचना समाप्त हुई। यद्यपि रामचंद्रिका रामकथा संबंधी महाकाव्य है, फिर भी इसमें वर्णित कथा वही नहीं है और न वही क्रम है जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का है। पूर्वार्ध में कथाक्रम कुछ कुछ साम्य भी रखता है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की स्वयं की उद्भावना और व्यवस्था है। इस काव्य के माध्यम से कवि का पांडित्य प्रदर्शित हुआ है। संवाद योजना, अलंकार योजना, छंद योजना की दृष्टि से यह काव्य कवि के कौशल को ही प्रस्तुत करता है। इसमें कवि ने कथात्मक परंपरा, मार्मिक स्थलों को ही स्वीकारने की परंपरा, अध्यायों में ही कथा को बांधने की परंपरा को तोड़ा है। यह 39 प्रकाशों में व्यवस्थित है। वास्तव में यह ग्रंथ भी काव्यशास्त्रीय पीठिका को प्रयोग में प्रस्तुत करके ही रचा गया है। विभीषण और सुग्रीव के चरित्रों को कवि ने ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया और न ही सीता परित्याग के दोष से राम को वैसे ही मुक्त किया है। उनका स्पष्टवादी स्वर अपने ढंग से उक्त प्रसंगों की अवतारणा करता है। तीसरी रचना देखिए, कविप्रिया। यह रचना काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना केशव ने अपनी प्रधान शिष्य प्रवीण राय को कवि शिक्षा देने के लिए की थी। सविता जु कविता दई ताकह परम प्रकाश ताके काज कवि प्रिया की नहीं केशव दास। इस ग्रंथ की समाप्ति फाल्गुन स्तुति पंचमी बुधवार संवत 1658 विक्रम में हुई थी। देखिए, प्रगट पंचमी को भयो कवि प्रिया अवतार 1658 फाल्गुन सुदी बुधवार। कवि जिज्ञासुओं को शिक्षा देने के लिए कवि ने ग्रंथ का उद्देश्य उल्लिखित किया है। समुझे बाला बाल कहु वर्णन पंथ अगाध कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि कवि अपराध। गुरु गंभीर शास्त्रीय विषयों को कवि प्रिया के माध्यम से बालाओं और बाल बुद्धि के काव्य रसिकों को भी कवि शिक्षा सुलभ कर दी है। इस काव्य रचना की अवस्था भी 16 प्रभावों में है। यह ग्रंथ भी कवि केशव के आचार्यत्व की पुष्टि करता है। यह लक्षण ग्रंथों की परिपाची में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लक्षण दोहों में तथा उसका उदाहरण कवित सवैयों में प्रस्तुत किया गया है। काव्य की दृष्टि से भी कुछ उदाहरण अत्यंत सरस हैं। इस ग्रंथ के द्वारा ही वे कवि और आचार्य दोनों सिद्ध होते हैं। अलंकारवादी कवि केशव ने इस रचना के माध्यम से अलंकारों के महत्व को सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इनकी अगली रचना रतन बावनी के संबंध देखिए, यह प्रशंसा परक ग्रंथ है। इसकी रचना ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र युवराज रतन सेन की प्रशंसा में हुई। रतन सेन ने बादशाह अकबर की विशाल वाहिनी का सामना करते हुए युद्ध में वीरगति पाई थी। इस ग्रंथ में एक घटना का उल्लेख है जिसके अनुसार रतन सेन के पिता मधुकर शाह अकबर के दरबार में ऊंचा जामा पहनकर गए थे। बादशाह ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने सरलता से कह दिया कि मेरे देश की भूमि कंटकमय है। इन शब्दों में अकबर को व्यंग प्रतीत हुआ और कहा कि मैं तुम्हारा देश देखूंगा। कुछ समय पश्चात अकबर ने ओरछा पर चढ़ाई कर दी। यह ग्रंथ डिंगल कविता शैली में लिखा गया है। इसमें 56 छंदों का बाहुल्य है जिनमें द्वित्व शब्दों के प्रयोग की बाहुलता है। यह छोटी रचना बड़ी ओजपूर्ण है। इसमें कुंवर रतन सेन के पराक्रमी जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। पुत्र रतन सेन ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार शाही सेना का डटकर सामना किया और अंत में स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ। नायक ने जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को तुच्छ समझा, इसमें वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है। इस ग्रंथ का नाम तो बावनी है, इसमें 53 छंद है। हो सकता है एक छंद प्रक्षिप्त हो। यह रचना प्रबंध काव्य शैली में है। इस ग्रंथ में रचना काल नहीं दिया हुआ। अनुमानतः इसका रचना काल रामचंद्रिका के पश्चात तथा वीर सिंह देवचरित से पहले रहा हो। पांचवी रचना देखिए, वीर सिंह देवचरित। यह ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है जो 33 प्रकाशों में व्यवस्थित है। इसके रचना संवत के संबंध में ग्रंथ का साक्ष्य है। संवत 1663 बीती गए प्रगटे चौसठा, अनल नाम संवत्सर लग गयो, भाग्य और दुख सब सुख जगमग गयो, ऋतु बसंत है स्वच्छ विचार, सिद्धि जोग मिति बसु बुधवार, सुकुल पक्ष कवि केशव दास, कीनो वीर चरित्र प्रकाश। अर्थात उक्त काव्य ग्रंथ की परिसमाप्ति वसंत ऋतु के शुक्ल पक्ष की अष्टमी बुधवार संवत 1664 विक्रम में हुई थी। इसकी रचना संवाद शैली में है। इसका प्रारंभ ओरछा नगर की प्रसिद्ध देवी विंध्यवासिनी तथा दान और लोभ के पारस्परिक वार्तालाप के रूप में हुई है। दान और लोभ एक दूसरे को नीचा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे प्रकाश में ओरछा नरेश वंश परिचय तथा तीसरे प्रकाश से 14वें तक मधुकर शाह के पुत्रों के पारस्परिक विरोध तथा ईर्ष्याजन वैमनस्य का वर्णन है। अकबर की सेनाओं से उनका विस्तृत युद्ध वर्णन भी हुआ है। इसमें अकबर की मृत्यु और वीर सिंह देव का समस्त ओरछा प्रदेश का अधिपति होने का वर्णन भी है। 15वें प्रकाश से लेकर 33वें प्रकाश तक वीर सिंह देव की दिनचर्या, उसके ऐश्वर्य एवं पराक्रम का विशद वर्णन है। वीरचरित में अनेक स्थानों पर कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, जिसमें नगर, सरोवर, वाटिका, राजमहल, सेनागार आदि के बिंब प्रभावशाली बन पड़े हैं। अंतिम प्रकाशों में राजा की दानशीलता, राजनीति, तत्परता का भी वर्णन है। इसके अंतिम प्रकाशों पर रामचंद्रिका के उत्तरार्ध की झलक दिखाई देती है। इसमें क्रोधारी भावों का सुंदर वर्णन है। वीर रस के अतिरिक्त भी अन्य रसों का उल्लेख है। इस ग्रंथ का जितना ऐतिहासिक महत्व है उतना काव्यात्मक नहीं। विज्ञान गीता, यह ग्रंथ कवि के वैराग्य काल की कृति है। जीवन के उत्तरार्ध तक आते आते कवि का दार्शनिक दृष्टिकोण प्रबल हो उठा है। यह रचना एक रूपक के रूप में लिखी गई है, जिसमें दार्शनिक विचार एवं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति प्रभावी बन पड़ी है। इस पर श्रीमद् भागवत गीता का स्पष्ट प्रभाव है। शांत रस की अखिल धारा संप्रधान मन को कारुण्य से स्निग्ध कर देती है। इसकी रचना संवत 1667 विक्रम में हुई थी। 1600 बीते बरस विमल सठा पाई, भाई ज्ञान गीता प्रगट सब ही को सुखदाई। कवि को इस ग्रंथ के लिखने की प्रेरणा महाराज वीर सिंह देव से प्राप्त हुई थी। इसमें कुल 21 प्रभाव हैं। दो राजाओं के रूप में मोह और विवेक का प्रतीकत्व मिलता है। महामोह की रानी मिथ्या दृष्टि है और दुरासा, तृष्णा, चिंता आदि उनकी दासी है। क्रोध, काम आदि मोह के सेनापति हैं, जो समय समय पर उसे सलाह भी देते हैं। आलस्य और रोग इसके प्रबल सूरवीर हैं, छल कपट आदि उसके चाकर। दूसरी ओर विवेक महाराज की पटरानी बुद्धि है, श्रद्धा, करुणा आदि अन्य रानियां हैं। सील, संतोष, दान, अनुराग, समदम आदि सात्विक गुण उसके कुटुंबी हैं। सत्संग, राजधर्म, विजय आदि विवेक के मंत्री और सभासद हैं। धैर्य उसका राजदूत है। महामोह विवेक को नष्ट करना चाहता है, इसलिए दोनों में युद्ध ठन जाता है। विवेक की प्रधान गढ़ काशी है, जिस पर अधिकार करने के लिए महामोह पूरी तत्परता दिखाता है। वह अपने दूतों को पहले काशी भेजता है, जो बहुतों को अपनी ओर मिला लेते हैं। महामोह के विस्तृत प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर उनकी विजय का विस्तृत वर्णन है। अंत में महामोह काशी पहुंचता है, जहां दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। अंत में महामोह पराजित होता है और विवेक को विजयश्री प्राप्त होती है। इस प्रकार एक दार्शनिक विषय को भी कवि ने काव्य दृष्टि के माध्यम से सरस बनाने का प्रयत्न किया है। इस ग्रंथ के माध्यम से तत्कालीन समाज एवं वातावरण का भी संकेत मिलता है। रस की दृष्टि से इसे शांत रस की कृति कह सकते हैं। अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। इस कृति का रचना संवत इस प्रकार दिया है। 1669 माधव मास विचारु, जहांगीर सकसाही की करी चंद्रिका चारु। इस ग्रंथ की रचना चैत्र मास के 1669 ईस्वी में हुई थी। इसका वर्ण रूपक भी सांकेतिक ही है। उद्यम और भाग्य दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अंत में निर्णय के लिए दोनों शिव के पास जाते हैं। शिव जी उन्हें बादशाह जहांगीर के पास भेजते हैं। जब दोनों राजधानी आगरा में पहुंचते हैं तो पहले कवि राजधानी का वर्णन करता है, फिर दोनों राजसभा में पहुंचते हैं। यही कवि जहांगीर, सभासद एवं अनुपस्थित राजाओं का वर्णन करता है। तत्पश्चात राजा उद्यम और भाग्य दोनों का आदर सत्कार करता है। अंत में अपना निर्णय देता है कि उद्यम और भाग्य में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों ही समान है। अंत में कवि उद्यम और भाग्य जहांगीर की प्रशंसा में छंद पढ़ते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। यही ग्रंथ की समाप्ति होती है। कवित्व की दृष्टि से रचना साधारण कोटि की है। राज दरबार का वर्णन सजीव और आंखों देखा सा प्रतीत होता है। उनकी अंतिम और अगली रचना देखिए, नकसिक। काव्य की दृष्टि से रचना उच्च कोटि की है। इसमें कवि परंपरा के अनुसार राधा के अंगों का नक्शे से तक सर्वांग वर्णन है। कवि परंपरा में प्रसिद्ध अंग प्रत्यंगों के लिए प्रसिद्ध उपमानों की योजना हुई है। तत्पश्चात उपमानों की सहायता से ही कविता की योजना है। इसकी रचना का उद्देश्य नक्शिक वर्णन के क्षेत्र में कवियों का शिक्षा देना है। इही विधि वर नहु सकल कवि अविरल छवि अंग अंग। कवि प्रिया में उल्लिखित है, कही जो पूर्व पंडितनी ताकी जितनी जानी तिनकी कविता अंग की उपमा नहीं बखानी। अर्थात कवि ने कवि परंपरा प्रसिद्ध उपमानों की सहायता से नायिका के अंग प्रत्यंगों का सरस वर्णन किया है। नक्सिक रचना का रचना संवत अंधकाराच्छन्न है। विद्वानों का मत है कि यद्यपि इसका उल्लेख कवि प्रिया के 14वें और 15वें प्रकाशों के मध्य में हुआ है, किंतु यह स्वतंत्र कृति है। यदि यह कवि प्रिया का ही अंग होती तो इसका वर्णन पृथक प्रकाश में होना चाहिए था। कवि प्रिया के 14वें प्रकाश में उपमा अलंकार का वर्णन है। संभव है अपनी शिष्या प्रवीण राय को उपमा अलंकार समझाते समय प्रसंगवश केशव ने नायिका के अंग प्रत्यंगों के लिए प्रयुक्त कवि परंपरा में प्रसिद्ध उपमानों को भी समझा देना उचित समझा हो। जो भी हो, नक्सिक के संबंध में रचना समर्थ है। उक्त 8 ग्रंथों के अतिरिक्त पहला जैमुनी की कथा, दूसरा हनुमान जन्म लीला, तीसरा बाल चरित्र, चौथा आनंद लहरी, पांचवा रस ललित, छठा कृष्ण लीला, ये 7 अप्रामाणिक तथा रामालंकृत मंजरी, यह संदिग्ध ग्रंथ भी केशव के नाम से उल्लिखित है। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में इसका उल्लेख है, किंतु ये ग्रंथ प्रसिद्ध आचार्य कवि केशव दास मिश्र के नहीं है, किन्हीं अन केशव गिरी, केशव राय, केशव राय अथवा निर्गुण मार्गी केशव दास के होंगे। इन ग्रंथों का आचार्य केशव कृत न होने का प्रबल प्रमाण प्रामाणिक ग्रंथों के कार्य विषय की पुनरावृत्ति, भाषा शैली में अंतर तथा अंतर साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य का अभाव ही है। तो ये था डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र की केशव का व्यक्तित्व और रचनाएं।